نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلوا كما رأيتموني أصلي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نماز کی اہمیت سے ہر ایک آگاہ بھی ہے اور نہیں ہے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن توحید کے بعد، عقیدے کی پختگی کے بعد جو پہلی چیز انسانوں سے مطلوب ہے وہ نماز ہے. کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام جو اس سے پہلا تقاضا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد آنے والی نماز کے وقت اس کا نماز کا ادا کرنا. پڑھنی نہیں آتی، زبان پہ نہیں چل رہی، ایکشنز نہیں آتے، بسم اللہ ہی پڑھتا رہے، لیکن وضو کر کے اپنے حساب سے جیسے بھی آتا ہے حاضری دینی پڑے گی کہ اللہ میں حاضر ہوں اور میں اس وقت اس بات پہ گواہ ہوں کہ یہ نماز مجھے تیرے قریب کرے گی. ہم لوگ چونکہ بون مسلم ہیں، شروع سے ایک کام کرتے آتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ چیزیں جو ہماری روٹین کا حصہ بن جاتی ہیں تو اس کی کوالٹی کو ہم اتنا مینٹین نہیں کر پاتے. کوئی کام کبھی کبھی کبھار کبھی کبھار کریں تو بہت شوق سے کرتے ہیں، اور جو چیز ایک دو دن تین چار دن کرنی پڑ جائے تو پھر روٹین لگتی ہے. تو یہی وجہ ہوئی کہ آج ہم مسلمانوں میں، نماز پڑھنے والے لوگوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو وہی 15 20 25 سال پہلے والی نمازوں کے طریقے پہ ادا کرتے ہیں جو کسی نے ان کو سکھا دی. وہی صورتیں جو ہماری زبان سے چڑھی ہوئی ہیں، چاہتے اور نہ چاہتے وہی نماز میں ہماری زبان سے آتی ہیں اور اسی طرح کی کیفیات ہیں. تو ہم سب نے انشاءاللہ تعالی اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے. اس کورس کا ایک بہت بڑا ہدف یہ ہے کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں. کیوں؟ کہ جب نماز زندہ ہوتی ہے نا تو تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے. ہم نے اپنے دلوں کو صراط مستقیم پہ جمانا ہے، نماز اس میں بہت مدد کرتی ہے جو کم از کم 5 دفعہ ادا کی جاتی ہے. اس کے لیے جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس کا نام ہے نماز نبوی، اور بنیادی طور پہ عربی کی کتاب تھی لیکن اس کا اردو ترجمہ ہمارے سامنے ہے. ڈاکٹر شفیق الرحمان ہے، ان کی یہ کتاب ہے لکھی ہوئی. لکھی ہوئی کہنے کی بجائے اس کو کمپائل کہنا چاہیے. کمپائل مین کہ مختلف حدیثوں کو جمع کر کے بس اس کو اوپر چیپٹر کا نام لکھ کے جمع کیا گیا. آج مارکیٹ میں نماز کے موضوع پہ بہت ساری کتابیں ملیں گی. بعض تو بس سٹینڈ پہ، ریڑھیوں پہ لگی ہوئی دکان، ریڑھیوں پہ لگی ہوئی جو بکس ہوتی ہیں ان میں بھی آپ کو ملیں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں سے اکثر کتابوں میں جو احادیث کوٹ کی جاتی ہیں یا جو نماز کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے اس میں کئی قسم کی کمیاں دکھتی ہیں. علمی باتیں ہیں جس کو اس وقت ہم بہت ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو صرف اس وقت ہم اپنے لیے یہ سوچ لیں کہ جو نماز میں بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں کیا اس میں کوئی کمی تو نہیں. آپ سوچیے کہ کیا اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہی ہوں میں اس کو دیکھ لوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم میں سے کوئی اگر اپنی نانی یا دادی کے وقت سے ایک گھر میں رہ رہا ہو، اولڈ ہاؤس جو اپنے گھر ہوتے ہیں، آبائی گھر، کیا اس گھر کی رینوویشن کرنا بری بات ہے؟ نہیں بری بات نا. اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی مرمت طلب چیز ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی. اور بعض دفعہ پرانی چیزوں کو نیا کر لیا جاتا ہے. آپ کے اس کو پرانے کپڑے رکھے ہوں اور آپ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی ہیں، آپ اسی کو دوبارہ پہننا چاہتی ہیں، آپ اس کو کاٹ چھانٹ کر کے نیا بنا سکتی ہیں نا. عقل مندی ہوتی ہے اور ایسا کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح جب ہم پرانی چیزوں کو نیا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ تعالی آج یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے اپنی پرانی سیکھی ہوئی نماز کو رینوویٹ کرنا. مسلمانوں کا ایک علمی ہے اور وہ کیا کہ جو ہی نماز کا موضوع آتا ہے نا اگریسو ہونے لگتے ہیں. ہر موضوع پہ بات سن لیں گے، نماز کے موضوع پہ بات سننے کو تیار نہیں. بس اگر کسی صاحب خانہ کو، کسی خاتون کو یہ کہا جائے کہ آئیے ذرا آپ کو نماز سکھاتے ہیں تو ہمارا منہ دیکھیں گی، کیا مطلب ہے مجھے نماز نہیں آتی. और बाज दफा वो माएं जो बच्चों को स्कूलों में लेके आती हैं कि इनको सिखाइए और दीन सिखाइए, उनकी खुद अपनी बहुत सारी कमियां होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने इस नियत से इस किताब को तफसील से पढ़ना है कि हमारी नमाजें ठीक हों। मैंने ये जो जुमला बोला ना कि अपनी नमाजों को ठीक करना है, ये बड़ा अहम है। बाज दफा होता क्या है कि पढ़ हम रहे होते हैं कोई चीज और हम चाहते हैं कि इसका असर दूसरे पे आए, अमल कोई दूसरा करे। यहाँ कोई बात सुनेंगे जाते ही घर में फतवा दे देंगे, तौबा तौबा तौबा, हम जो नमाज पढ़ते थे उसमें तो ऐसे था और ये था। अगले दिन क्या होगा, घर वाले कहेंगे आराम से बैठो, कोई जाने की जरूरत नहीं। तो इस वक्त आपने बड़ी हिकमत अमली के साथ पहले खुद इस पूरे मौजू को समझना है। इस किताब को चूज करने की जो वजह थी वो क्या थी कि ये वो किताब है कि जिसमें एक तो तरतीब बड़ी खूबसूरत है, पहले नमाज की अहमियत पे बात है, पढ़नी क्यों है, फिर उसके बाद है कैसे पढ़नी है, और जो बात की गई है उसकी हदीस मौजूद है। अगर घर जाके आप किताब को देखेंगे या जिनके पास है देख सकते हैं, हर पेज के नीचे लाइन लगी हुई, ये बुलेट पॉइंट्स है 1 2 3 4, हर पेज के नीचे आपको मिलेंगे जहाँ कोई नई बात शुरू हो रही है या खत्म है। ये है वो वजह जिसकी वजह से इस किताब को चुना गया, जिसको अमूमन लोग अहम भी नहीं समझेंगे, लेकिन यहाँ जितनी भी हदीसें पेश की गई है ना उन सबके रेफरेंस लिखे हुए हैं, और रेफरेंस जो है ना ये ऑथेंटिसिटी की दलील है। और ये अहादीस भी कौन सी हैं जो आज के इस दौर के मुजद्दद कह लीजिए नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह की तखरीज, ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने अहादीस में से सही और ज़ईफ रिवायतों को अलग किया। ये ऐसे जैसे घर गंदा रहता है फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सफाई करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर चीजें निकालते रहते हैं, साफ चीजें डालते रहते हैं। दीन के साथ भी यही होता है, जब अल्लाह के नबियों को दुनिया से गए हुए थोड़ा सा अरसा गुजरने लगता है ना तो उसके बाद होता क्या है कि दीन में इजाफे शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत सिंपल है, बस अगर आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाए ना तो आप यहाँ की बजाय वहां तक फैल के बैठ जाएंगे, ये फितरी बात है। और 2 4 दिन अगर आपको हम टोकना छोड़ देना कि आपने व्हाइट स्कार्फ पहनना है कि नहीं पहनना, तो थोड़े दिन के बाद आपको इस व्हाइट से जो पहले दिन खुशी हुई थी ना, आप कहेंगे अब रोज व्हाइट पहनो, तो आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा रंग बिरंगा स्कार्फ पहन ले। इंसान की फितरत है, दीन के अंदर ऐसी चीज काबले बर्दाश्त नहीं होती। तो अहदीस में कहीं मोहब्बत के नाम पे, कहीं गलुफ के नाम पे, कहीं फजाइल और आमाल के नाम पे कुछ चीजों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रमोट करने की वजह से इस वक्त पाकिस्तानी और इंडियन यानी उर्दू लिटरेचर में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे इजाफे हो चुके हैं। लोग नमाज की किताबें पकड़ के दिखाते हैं कि देखे मैंने तो फलां किताब में ये बात पढ़ी है, किताब में तो पढ़ी है, वो किताब में रेफरेंस किसका है ये नहीं पता होता। और बार दफा नीचे जो नाम लिखे भी होते हैं अमूमन हमें नहीं पता कि उसकी सनद क्या है। हमारा ईमान है कि जिस मुसलमान ने लिखी है उसने पूरी इखलास से और नीयत से लिखी है, लेकिन जिसको खुद भी नहीं पता होगा वो क्या करेगा। तो लिहाजा हम इस इंशाल्लाह रोशनी में देखेंगे। और अगर आप इस किताब को ना पढ़ना चाहें ना तो इससे भी आसान तरीका बता सकते हो, अगर आप करना चाहें आप सारी सियासत खरीद लें, जो 6 बड़ी बड़ी किताबें हैं ना एक एक किताब की, यानी सही बुखारी की सिर्फ 9 जिल्दें हैं, सही मुस्लिम की जिल्दें हैं, फिर इब्ने माजा और जो भी 6 किताबें हैं उन सब के किताबों सलात निकाल लें, जो चैप्टर है नमाज से उसको पढ़ लें, जो यकीनन आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा, फिर उसमें रेपिटिशन होती है, उसमें लफ्ज मुश्किल होते हैं, तो ये किताबें जो होती हैं ये असल में उसी में से वो चीजों को जो हमारे लिए जिस तरतीब से आनी चाहिए फाइल अप की जाती हैं। अब इसका तरीके का ये होगा कि देखिए आइडियल सिचुएशन तो ये है कि मैं यहाँ पढ़ूं और आप सुने और साथ साथ हम उस पर डिस्कशन करें, लेकिन जो हमारे पास टाइम मार्जिन है वो इस तरह पूरा नहीं होगा। वैसे भी जब ये किताबें चूज की गई थी तो हमने इसमें आपके लिए स्टडी बुक्स रखी थी कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो खुद सिर्फ गौर से पढ़े तो समझ आ जाती है, मतलब कुरान की तफसीर है ना वो खुद पढ़ के समझ नहीं आती जब तक कोई आपको सिखाता नहीं। लेकिन अब जैसे ये बुक है पेज नंबर 33 से बेसिकली ये किताब शुरू होती है, नमाज की फर्जियत फजीलत और अहमियत। मैं एक पेज पढ़ती हूँ आपके लिए और आपको थोड़ा सा सिखाने का अंदाज भी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये इतनी आसान लफ्जों में लिखी हुई किताब है कि आप घर में खुद भी सीख सकते हैं। आपकी बुक में फर्क हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। जो आपकी बुक पे ना चैप्टर का नाम मैं पढ़ूंगी, जिनके पास बुक्स हैं आप खोल लें, जिनके पास नहीं है सिर्फ सुने, ठीक है, और घर जाके आप देख सकते हैं। चलिए अल्लाह ताला की तौफीक से शुरू करते हैं किताब को। पहला चैप्टर है नमाज फर्जियत फजीलत और अहमियत, यानी नमाज फर्ज है, उसकी फजीलत क्या है और उसकी अहमियत क्या है। औलाद को नमाज सिखाने का हुक्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। जब वो 7 साल के हो जाएं और जब वो 10 बरस के हों तो उनको तरके नमाज पर मारो और उनके बिस्तर जुदा कर दो। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने बच्चों के वालिदैन को इरशाद फरमाया कि वो अपनी औलाद को 7 बरस की उम्र में ही नमाज की तालीम देकर नमाज का आदी बनाने की कोशिश करें, और अगर 10 बरस के होकर भी वो नमाज ना पढ़े तो वालिदैन तादीबी, तादीब होता है अदब सिखाना, अदब सिखाने के लिए उनको सजा देकर नमाज का पाबंद बनाए। और 10 बरस की उम्र का जमाना चूंकि बुलूगत के करीब का जमाना है यानी प्यूबर्टी का, इसलिए इन्हें इकट्ठा न सोने दें। अब ये एक हदीस है ना यहाँ बयान हुई, औलाद को नमाज सिखाने की बात 7 साल से शुरू की जाएगी, 10 साल पे सख्ती की जाएगी। इस्लाम वक्त के आने से पहले तैयारी करने की आदत डालता है। 7 साल की उम्र बच्चे के शऊर के शुरू होने की उम्र होती है। इस उम्र में जब नमाज का लफ्ज कानों में पड़ता है और उसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है, 3 साल अल्लाह ताला ने तदरीज के लिए दिए, आदत हो जाए। शुरू में जरूरी नहीं कि आप पूरी नमाज उसको पढ़ाएं और वो इतना बोझल महसूस करे कि नमाज से चिड़ हो जाए, नहीं, सिर्फ फर्ज पढ़ ले, फिर ऐसा ऐसा पढ़ ले, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, लेकिन उसको मुसलसल उस नमाज के करीब करते जाएं, हत्ता कि फिर 10 साल का होने पे उसको खुद ही आदत हो जाएगी। और चूंकि इस उम्र में जिस्म के अंदर तब्दीलियां आती हैं, तो कहा कि दो बच्चों को इकट्ठा एक बिस्तर पे न सुलाओ, चाहे वो दो बेटे हैं या दो बेटियां। कि आज के दौर के फितने आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये बातें बयान की थी उस वक्त तो इन चीजों का तसव्वुर भी नहीं था जो आज इंसानियत को भुगतनी पड़ रही है। तो हमारे लिए इसमें से अमल की बात क्या है कि हमने चेक करना है, अगर मैरिड है बच्चों वाले हैं तो क्या मैं अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म देती हूँ। उससे पहले शुरू कर दें, माँ नमाज पढ़ेगी ना तो बच्चे भी पढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चियां हैं वो दुपट्टे लेके फिरती हैं, बाप मस्जिद में जाते हैं तो बच्चे भी टोपी पहन के जाना चाहते हैं। इसी तरह आप अपने घरों में नमाज का माहौल पैदा कर सकते हैं, और आप देखिए कि जो बचपन की आदत होती है ना वो सारी जिंदगी नहीं जाती, पत्थर पे लकीरें लग जाती है ना वो नहीं निकलती, इस तरह बचपन की आदतें बंदे की अंदर से नहीं जाती। बाद में आप पढ़ने के बाद कुरान पढ़ ले, सीख ले, सिखा ले, खौफ आ जाता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले नमाजें पक्की करने की या बाकी आदत अपनाने की, वो बात जो बचपन से करने के बाद आती है ना वो बात फिर भी नहीं बनती। तो लिहाजा हमने इस चीज पे अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं माँ होने के नाते इस फरीजे से गाफिल तो नहीं हूँ। और वो बच्चियां जो बिन ब्याही हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने ये हदीस आज ही सुन ली, इनशाला जब कल वक्त आएगा तो वो इस पे अमल कर सकती हैं। वो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ इस हदीस को अप्लाई कर सकती हैं, घरों में छोटे बच्चे तो होते ही है ना, चले अपने बहन भाई नहीं है तो चचा के बच्चे, ताया के बच्चे, मामू के बच्चे। मुसलमान तो हर एक के लिए खैर ख्वाह होता है, तो 7 से 10 साल की उम्र जो है ये नमाज की आदत डालने की उम्र है। अगला हुक्म इसमें क्या है कि तरके नमाज कुफर का ऐलान है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईमान और कुफर के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ देना है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम और कुफर के दरमियान नमाज दीवार की तरह हायल है। दूसरे लफ्जों में नमाज का तर्क मुसलमान को कुफर तक पहुंचाने वाला अमल है। अब देख रहे हैं कि पहली हदीस के खत्म होते ही 1 लिखा हुआ था, नीचे आप देखेंगे ना तो उस 1 के साथ फिर 1 को मिलाएंगे तो उसका हवाला अबू दाऊद अस्सलात बाब मता यू मरुल गुलाम बिस्सलात, यानी वो चैप्टर के कब बच्चे को नमाज का हुक्म दिया जाए, हदीस नंबर 494 और 495 यानी 494 और 495 में है, यानी अबू दाऊद बुक जो किताब है हदीस की, उसमें अगर इस हदीस को देखना हो तो किताबु सलात और उसका फिर सब टाइटल बच्चे को कब नमाज का हुक्म दिया जाए और हदीस का नंबर लिखा है। फिर इसके बाद दूसरी किताब का रेफरेंस है तिर्मिजी, उसमें भी सलात चैप्टर है, बाप माँ जा मता यू मरत सभी युब सलात के बच्चे को कब नमाज का हुक्म दिया जाए और हदीस नंबर 407 है और हाकिम और जाहबी ने सही कहा है। ये रेफरेंस समझना बता रही हूँ कि किस तरह से आप किसी भी हदीस को देखें तो नीचे उसका रेफरेंस होगा जो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी, और कभी कोई कल मांगे तो आप उसको दिखा भी सकते हैं। दूसरी हदीस का नीचे देखें आप, मुस्लिम अल ईमान, बाप बयान यानी बाप जो है उसका नाम भी लिखा हुआ है, इत्तला किस्मुल कुफरी अला मन तरक सलात, हदीस नंबर 82। तो लिहाजा इस तरह से इन अहादीस को हम पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ चेकलिस्टें बनाएंगे। आप लोग अपने पास इनको पेपर रख सकते हैं, इंडेक्स पेपर रख लें या एक नोटबुक बना लें अलग से, उसको नाम ही दे दें माई सलात बुक। बच्चों की जो बुक्स होती है ना वो तो होती है माई फर्स्ट सलाह बुक, लेकिन मुझे लगता है हम में से भी बहुत सारों की वो फर्स्ट सलाह बुक ही होगी। क्या मैं सही समझी? हमने कभी आज तक नमाज की किताब बनाई? नमाज से ना ये पूरे दीन का खुलासा बनता है। अब आप एक्टिविटी के तौर पे करेंगे, जो टॉपिक पढ़े जैसे पहला टॉपिक पढ़ा ना बच्चों की नमाज का, और इसको आप इस पे कम से कम 2-4 मिनट तक सोचें। बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना कि पढ़ के पूरी किताब रख दी आगे, नहीं। नंबर एक अपनी किताब में डालें फर्स्ट थिंग जो भी था टॉपिक, औलाद को नमाज का हुक्म, फिर अपना जायजा ले, देती हूँ नहीं देती, इरादा कर लें ऐसा करूंगी, अभी नहीं मौका, बात बच्चे नहीं है तो किसी और को दूंगी, यानी थोड़ी सी बातें खुद अपने आप से करें, फिर उसके बाद अगली बात पे चलें। अगर आप मिलके दो लोगों के साथ करना चाहें, घर में शौहर है उनके साथ मिलके पढ़ना चाहें या कुछ, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इस तरह से आपने तकरीबन हर दिन इस तरह से अपनी अपना बुक प्लान खुद बना ले, लेसन प्लान जैसे होता है, हम लोग भी आपको देंगे इंशाल्लाह, जैसे मैं आज से आपको देने वाली हूँ, तो आप उसको पढ़ के आएंगे। हम ये क्या करेंगे कि घर से आप पूरा पढ़ चुके होंगे वो चैप्टर, लेकिन यहाँ हम उसमें से कुछ सवाल आपके जहनों में आया होगा, कोई डिस्कशन जो चीज उससे मुतालिक होगी वो यहाँ करेंगे, ठीक है? तो इससे दो फायदे होंगे। अगर मैं पढ़ूंगी ना तो फिर तो शायद हम सिर्फ बुक ही पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ इतना टाइम ही नहीं होगा कि उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन जब आप घर से पढ़ के आएंगे ना तो उससे फायदा ये होगा कि बाद में यहाँ हमें आपके क्वेश्चंस और इस चीजों का वक्त मिल जाएगा, और यही प्रॉपर तरीका भी यही होता है। तो इंशाल्लाह ताला आप कल के लिए इस किताब का ये पहला चैप्टर और अगला तहारत वाला चैप्टर, ये दो चैप्टर आप पढ़ के आएंगे, मैं दोनों के नाम बोल देती हूँ, इंशाल्लाह आपको इतना मजा आने लगेगा। और इसमें देखिए हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे मुझे आदत है कोई भी चीज अच्छी लगती है ना उसको थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ, किताब को गंदा तो ना करें लेकिन हाईलाइट जरूर कीजिएगा। तो इसमें से नमाज की अहमियत, फजीलत और अहमियत वाला जो चैप्टर है एक, ये पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ अपने नोटबुक बनाए, मैं देखूंगी कल आपकी इधर नोटबुक जो होंगी इस मौजू पे। और दूसरा जो तहारत के मसाले हैं वो काफी लंबा चैप्टर है, इसमें से आप जी जो पूरा पढ़ लेंगे तो एक्सीलेंट है, 61 पेज तक यानी तकरीबन 30 पेज बनते हैं। पूरा ना पढ़ सके तो इंशाल्लाह उसमें से खास तौर पे वो चैप्टर जिस कल हम यहाँ पे इस चीज को देखेंगे जो इसके अंदर हमारे हिसाब से आता है, जैसे पीरियड्स की कुछ बातें हैं, फिर नमाज रोजा, तो इसके रेलेवेंट चीजों को इंशाल्लाह देखेंगे। कोई क्वेश्चन होगा आपके जहन में तो उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा, और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन फायदा उठाने वाला बना दे। और ये जो बुक है ना इसका टेस्ट आपको दिन में 5 बार देना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए उस टेस्ट के लिए भी तैयार है। कुछ चीजें तो होती है ना जिसमें वक्त लगता है, फिर आपको एक पेपर दिया जाता है आप तैयारी करते हैं और खत्म, लेकिन आप देखें कि ये वो बुक है कि जिसका टेस्ट आप ऑलरेडी दे रहे हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, दिन में 5 बार नमाज पढ़ती हूँ और अगर मेरी नमाज में कोई कमी है तो दिन में 5 दफा वो कमी दोहराती हूँ ना अल्लाह के सामने, अल्लाह सुबहाना ताला की निगाह में तो है ना, तुम्हें कैसे पढ़ रही हो, क्या मुकाम रह जाता होगा मेरा कि ये बंदी दिन में 5 बार ये गलत तरीके से बात पढ़ती है, और इस पे 2 नफिल पढ़ सके ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने हमारे हाथों में ये किताब दे दी है। 10 दफा भी अगर आप इसको पढ़ के देखेंगे ना तो आपको हर दफा अपनी नमाज में कोई नक्स मिलेगा। यकीन करें, पढ़ने और पढ़ाने के दौरान अपनी नमाज को इंसान इतना बेहतर करता है कि वो नमाज जो बचपन में पढ़ते थे वो और उस नमाज में बहुत बड़ा फर्क लगने लगता है। तो अल्लाह ताला हमें इससे बेहतरीन फायदा उठाने वाला बना दे।